कोरोना दिनभर 1 अप्रैल बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1600 से ज्यादा, अब तक 38 मौतें। क्या एक वजह तबलीगी जमात भी है?
मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं।
आपको बताएंगे कि क्या है तबलीगी जमात।
वो डोर टू डोर जाकर उनको इस्लाम का पैगाम देते हैं, वो लिटरेचर या ऑनलाइन ये सब पे विश्वास ज्यादा नहीं करते हैं, उन फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है।
जानिएगा कि कोरोना को फैलने से रोकने के क्या है तरीके, साथ ही सुनिएगा लॉकडाउन का पोस्ट कार्ड। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना दिनभर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना संक्रमण से जूझ रही है, ऐसे में बीबीसी हिंदी सेवा फेसबुक पर लाइव प्रसारण के माध्यम से तमाम जानकारियां और खबरें प्रसारित कर रही है और आज हमारी इस पेशकश का तीसरा दिन है। आप हमें सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि हफ्ते के 5 दिन 7:30 बजे से सुन सकते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम रेडियो पर उपलब्ध नहीं है। आज भी कल की तरह अंत में कोशिश होगी आपकी टिप्पणियों को शामिल करने की। तो सबसे पहले दुनिया की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 9.25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 43,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, साथ ही 2.25 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ये आंकड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हैं। यूरोपीय देशों में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 30,000 को पार कर चुकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देशवासियों से कहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी का ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक काम पर लौट आएं। लोगों से कहा गया है कि वो सिनेमा में जाने की बजाय घर पर फिल्में देखें और रेस्टोरेंट किसी भी समय खाना खाने वालों की संख्या को सीमित करें। इस बीच स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के ऐसे पहले मामले की जानकारी दी है जो कि विदेश से आया है। ब्रिटेन में पढ़ने वाले एक चीनी छात्र का जब वुहान में वापस आया तो उसका कोरोना टेस्ट किया गया, वो पॉजिटिव निकला। बुधवार को 1,000 से अधिक ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिली जिसमें कोरोना के लक्षण नजर आए हैं। अधिकारियों को इस बात की चिंता है कि विदेशों से आने वाले लोगों से कोरोना संक्रमण के मामलों में नए सिरे से बढ़ोतरी हो सकती है। स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां एक बार फिर से एक ही दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यहां 24 घंटे में 824 मरीजों की मौत हो गई। महामारी शुरू होने के बाद से स्पेन में अब तक 9,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इटली के बाद स्पेन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। जापान में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बावजूद प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि अभी देश की स्थिति वैसी नहीं है जब उन्हें औपचारिक रूप से आपातकाल घोषित करने की जरूरत पड़े। उन्होंने कहा कि आपातकाल की घोषणा करने से उन्हें कोई असीमित अधिकार नहीं मिल जाएंगे। आबे ने कहा कि जिस तरह से फ्रांस ने अपने शहरों को लॉकडाउन किया है वैसा जापान नहीं कर सकता, क्योंकि जापानी कानून के तहत ये बाध्यकारी नहीं हो सकता। बुधवार को जापान के नए पुष्ट मामलों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां अब तक कोरोना संक्रमण के लगभग 3,000 मामले आ चुके हैं। पोलैंड ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। प्रतिबंधों के तहत होटल, पार्क, समुद्र तट और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों को बंद कर दिया है। पोलैंड अब तक इस महामारी के प्रकोप से बचा हुआ है। कोरोना वायरस के असर को देखते हुए अल्जीरिया अपने कुछ कैदियों को रिहा करने जा रहा है। राष्ट्रपति ने लगभग 5,000 बंदियों को माफी दे दी है। जिन कैदियों को रिहा किया जाना है उनकी सजा या तो 18 महीने या फिर उससे कम बची है। जॉर्डन, मिस्र, बहरीन और यमन जैसे देशों ने भी अपने कैदियों को रिहा किया है। सीरिया और ईरान भी जेल में हजारों लोगों को या तो रिहा या फिर अस्थायी तौर पर रिहा कर चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी देशों से राजनीतिक कैदियों को जेल से रिहा कराने की अपील की है। तो ये थी कोरोना से जुड़ी दुनिया भर की खबरें। अब बात भारत की। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,637 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब तक 38 मरीजों की मौत हुई जबकि 132 ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मार्च में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। तबलीगी जमात से जुड़े मौलाना मोहम्मद साद की खोज जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा,
करीब 3.5 दिन तक पूरा ऑपरेशन चला। इसमें से पिछले 36 घंटे में बहुत ही सघन अभियान हमारी मेडिकल टीम, पुलिस, हमारे प्रशासन के अधिकारी और हमारे डीटीसी के अधिकारी सबने मिलकर चलाया। और लास्ट के 36 घंटे में तो सुबह 4 बजे तक ही अभियान चलाया गया है और इसमें कुल मिला के 2361 लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी, जुखाम, बुखार, इस तरह के सिम्टम्स हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनकी सघन जांच की जा रही है, उनके सैंपल लेकर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी सब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है अलग अलग सेंटर्स पर।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आवाज आप सुन रहे थे। तबलीगी जमात के कार्यक्रम से तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन बाकी राज्य सरकारें भी कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को तलाशने के काम में जुट गई हैं ताकि इसमें शामिल सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में आई अचानक बढ़ोतरी के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा,
अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कंफर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं।
लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे। तबलीगी जमात का दावा है कि लॉकडाउन की घोषणा होते ही उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, लेकिन आने जाने की सुविधा न होने की वजह से फंसे हुए लोग वापस नहीं लौट सके। लेकिन जो तबलीगी जमात चर्चा में है वो क्या है और कैसे काम करता है, बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से पूछा जाए।
तबलीगी जमात जो एक इस्लामिक संस्था है जिसकी स्थापना 1926 में भारत में की गई थी मेवात इलाके में, और इसका उद्देश्य है मुसलमानों के बीच इस्लाम की सही जानकारी उन तक पहुंचाना, जो इनके हिसाब से सही इस्लाम है कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद के की जो शिक्षा है उसके आधार पर मुसलमानों को सही रास्ते पर लाना। और इसके लिए वो हर 40 दिन का एक चिल्ला उसको कहते हैं, 40 दिन के लिए जाते हैं मोहल्लों में मुसलमानों के, वहाँ उनके बीच में वो डोर टू डोर जाकर उनको इस्लाम का पैगाम देते हैं। वो लिटरेचर या ऑनलाइन ये सब पे विश्वास ज़्यादा नहीं करते हैं, उन फिज़िकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। और इनका जो एक तरीका है कि लोगों को इकट्ठा करते हैं मस्जिदों में, जहाँ जहाँ इनके केंद्र हैं वहाँ पर बैठ के फिर वो इस्लाम के ऊपर जो है वो उसका एक तरह से बयानबाजी होती है, लेक्चर्स होते हैं, लेकिन वो सेमिनार सिंपोजियम टाइप नहीं करते हैं। आपको ये यहाँ बताना ज़रूरी है कि जब ब्रिटिश राज में 20वीं सदी के शुरू में मुस्लिम जो भारत में रह रहे थे एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनको लगने लगा था कि उनकी पहचान, इस्लामिक पहचान और उनकी सियासी पहचान जो है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग एक पार्टी है मुसलमानों की, उसकी स्थापना हुई ताकि वो पॉलिटिकल जो उनके राइट्स हैं उसका प्रमोशन हो सके। उसके बाद 2 इस्लामी पार्टियों की स्थापना हुई, जमात इस्लामी 1941 में और तबलीगी जमात का 1926 में। इन दोनों इस्लामिक पार्टियों का उद्देश्य लगभग एक ही है, लेकिन जमात इस्लामी का ये कहना था कि सिर्फ मुसलमानों तक ही इस्लाम को नहीं फैलाना चाहिए, गैर मुस्लिमों में भी आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब ये अगर आप कन्वर्ट होना चाहे कोई गैर मुस्लिम तो वो इस्लाम में उसको लाना।
जुबैर, कहाँ कहाँ पर, हिंदुस्तान से शुरुआत ज़रूर हुई लेकिन पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर तबलीगी जमात है?
देखिए, जब इसकी स्थापना हिंदुस्तान में ज़रूर हुई अनडिवाइडेड इंडिया में, उसके बाद जब पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना तो उन देशों में इनकी मौजूदगी वैसे ही बरकरार रही जैसे कि अनडिवाइडेड इंडिया में थी। इसीलिए आप देखिए एक बिस्वा इज्तिमा होता है बांग्लादेश में ढाका के नज़दीक, जो मक्का के बाद सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक एक जो गैदरिंग होती है दुनिया भर में वो सबसे बड़ी गैदरिंग वहाँ बांग्लादेश में होती है। पाकिस्तान में भी ये बहुत मजबूत हैं। और जब इसका पूरी दुनिया में विस्तार होने लगा तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। और आपको बता दूं कि सन 2000 के बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी ایک زمانے میں اس وقت 2005-2006 اور 2007 کے آس پاس ایسا کہا جانے لگا کہ اس نیشنل ٹیم کے جتنے بھی کھلاڑی تھے اس میں ادھکتر اس تبلیغ سے تبلیغی جماعت سے بہت ہی زیادہ اٹریکٹڈ تھے, اور انضمام الحق اور اس کے بعد مشتاق احمد, یوسف یوہانا اور بھی کئی دوسرے تھے جو باضابطہ ممبر بن گئے, اور یہاں تک کہ ایک ساتھ مل کے جب بھی لنچ ٹائم ہوتا تھا تو نماز پڑھتے تھے اور ٹی ٹائم ہوتا تھا تو نماز پڑھتے تھے. تو اس وقت کے جو باب ولمر ان کے مینیجر تھے ان کو تھوڑی سی یہ بات کھٹک بھی رہی تھی. یہاں تک کہ کہا جانے لگا تھا کہ یہ پاکستانی کرکٹر جو ہے وہ پاکستان کے کرکٹنگ امبیسڈر سے زیادہ تبلیغی جماعت کے کرکٹنگ امبیسڈرز بن گئے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تبلیغی جماعت کا اثر کتنا پھیل چکا تھا.
تو زبیر احمد بتا رہے تھے کہ یہ تبلیغی جماعت کیا ہے, اور یہاں پر ہم اپنے ان تمام شروتاؤں کا ابھینندن کرتے ہیں جو کہ اس فیس بک پر ہمیں لگاتار سن رہے ہیں. اس سمے ہزاروں لوگ لائیو اس کارکرم کو سن رہے ہیں اور اپنی ٹپنیاں کر رہے ہیں. کارکرم کے انت میں ہم آپ کی کچھ ٹپنیوں کو بھی شامل کریں گے اور ایک سوال کا بھی جواب دیں گے جو کہ آپ نے پوچھا ہے. آپ سے انوروھ ہے کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کورونا سے سمبندھت تو وہ آپ لکھ بھیجیں, آج نہیں تو کل ضرور اس کا ہم جواب دیں گے. اور اب بی بی سی سنواداتا سرپریا سانگوان سے سنیے کہ کورونا وائرس کی لڑائی میں انڈیا آخرکار کس دیش سے کیا کیا سیکھ سکتا ہے.
یورپ, دکشن امریکہ اور مدھیہ پورو میں بڑھتا جا رہا ہے, لیکن وہیں کچھ ایسے دیش بھی ہیں جنہوں نے اسے بڑھنے سے روکنے کے لیے کئی قدم اٹھائے اور سنکرمن کو سیمت کر پائے. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ایپیڈیمیولوجسٹ ٹالبرٹ ینسوا نے بتایا کہ ان دیشوں نے کون سے ایسے قدم اٹھائے جو اثردار ثابت ہوئے. جانتے ہیں وہ پانچ خاص اسٹریٹجیز. ٹیسٹ, ٹیسٹ اور ٹیسٹ. WHO یعنی وشو سواستھیہ سنگٹھن نے کہا کہ شروعاتی دور میں ہی سنکرمن کی جانچ کر لینا ایک بڑا فیکٹر ثابت ہوتا ہے, جسے دکشن کوریا نے ہر دن 10,000 ٹیسٹ کیے, یعنی دو دن میں ہی اتنے ٹیسٹ کر دیے جتنے پورے امریکہ نے ایک مہینے میں بھی نہیں کیے. ہر دیش کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف انہیں نہیں جو گمبھیر روپ سے بیمار ہیں, کیونکہ اس سے صحیح ڈیٹا نہیں ملے گا اور جو مائلڈ سمپٹمس والے ہیں ان سے سنکرمن پھیلتا رہے گا. دوسری اسٹریٹجی ہے سنکرمت کو آئسولیٹ کرنے کی, یعنی الگ تھلگ کرنے کی. دکشن کوریا اور چین نے یہ اچھے سے کیا, سنکرمت کو ٹریک کرنا, ٹیسٹ کرنا اور پھر باقی ناگرکوں کو بچانا. ٹیسٹ سے شروعاتی سٹیج والے بھی پکڑ میں آ جاتے ہیں, اور یہی چین پرشاسن نے کیا کہ نئے کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا. جن لوگوں کو تیز بخار تھا انہیں فیور کلینک بھیجا گیا فلو اور COVID-19 کی جانچ کے لیے. اگر COVID-19 پازیٹیو آیا تو انہیں آئسولیٹ کر کوارنٹین ہاسٹل بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے پریوار کو بھی سنکرمت نہ کر دیں. تائیوان, سنگاپور اور ہانگ کانگ نے الگ طریقہ اپنایا, سسپیکٹڈ کیسز کو گھر میں ہی آئسولیٹ کیا اور نیم توڑنے والوں پر $3,000 جرمانہ لگایا. جو لوگ بیمار کے سمپرک میں آئے تھے انہیں بھی اسپاٹ کیا گیا. جیسے 12 مارچ کو ہانگ کانگ میں 445 سسپیکٹڈ کیس تھے, لیکن پرشاسن نے 14,900 لوگوں کو ٹیسٹ کیا جو ان سب کے سمپرک میں آئے تھے, ان میں 19 لوگ پازیٹو نکلے. تیسری اسٹریٹجی ہے تیاری اور ترنت کاروائی. جرنل آف دا امیریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایک لیکھ کے مطابق تائیوان کو اس لیے بھی کامیابی ملی کیونکہ آئیلینڈ پہلے سے تیار تھا. 2003 میں ہی مہاماری کو کنٹرول کرنے کے لیے کمانڈ سینٹر بنا دیا گیا تھا. تائیوان جنوری سے ہی ووہان سے آنے والے لوگوں کی اسکریننگ کرنے لگا تھا. ہانگ کانگ میں 3 جنوری سے ہی ٹیمپریچر ڈیٹیکشن اسٹیشن بنا دیے گئے تھے ایئرپورٹس پر, اور آنے والے ٹورسٹ کو 14 دن کوارنٹین کیا جا رہا تھا. یوروپ اور امریکہ نے ریئیکٹ کرنے میں دیری کی, تو ٹائم بھی ایک بڑا فیکٹر رہا. چوتھی اسٹریٹجی رہی سوشل ڈسٹینسنگ. ایک بار وائرس دیش میں گھس گیا تو پھر باقی کوئی طریقہ کام نہیں کرتا ہے. بہترین طریقہ صرف ایک ہے کہ ترنت سوشل ڈسٹینسنگ امپلیمنٹ کی جائے. جنوری کے انت میں ہی ہانگ کانگ نے لوگوں کو گھر سے کام کرنے کو کہہ دیا تھا, اسکول بند کر دیے تھے اور سبھی سماجک سماروہ بند کر دیے تھے. پانچویں اسٹریٹجی ہے صفائی. WHO کہتا ہے کہ ریگولرلی اپنے ہاتھ دھونا اور صفائی رکھنا سنکرمن سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے. کئی ایشیائی دیشوں نے 2003 میں سارس وائرس کے انوبھو سے سیکھا ہے. سنگاپور, تائیوان, ہانگ کانگ میں سینیٹائزر ہر جگہ رکھے ہوتے ہیں, ماسک بھی لوگ ریگولر استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ماسک ہمیشہ کارگر نہیں ہوتے, لیکن کم سے کم کھانسی اور چھینک سے پھیلنے والے سنکرمن کا خطرہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. تو یہ تھے وہ 5 اسٹریٹجیز جس سے کچھ دیشوں نے اپنے یہاں سنکرمن کو سیمت کیا.
تو سرپریا سنگوان بتا رہی تھی کہ کورونا وائرس کی لڑائی میں بھارت کس دیش سے کیا کیا سیکھ سکتا ہے اور وہ آخرکار رڑنیتیاں کیا ہیں. کارکرم کے انت میں ہماری وشیش پرستوتی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 دنوں سے آپ لاک ڈاؤن کے پوسٹ کارڈ سن رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں, تو آج سنیے بی بی سی سنواداتا پرینکا دوبے کا لکھا پوسٹ کارڈ روپا جھا کی آواز میں.
लॉकडाउन के पोस्टकार्ड्स। आज ये पोस्टकार्ड लिखा है बीबीसी हिंदी की हमारी साथी प्रियंका दुबे ने। बीते मार्च के आभासी दिन स्मृति की न जाने कितनी ही पुरानी गांठें खोल गए। आभासी इसीलिए क्योंकि ये आभास तो खाली होने का दे रहे थे, मगर असल में घोर मानवीय दुख की दारुण कथाओं से इस कदर डूबे हुए थे कि इन दोनों का बोझ मुझसे उठाए नहीं उठा। इसीलिए टूटी दोपहरों में कुंदेरा की अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग याद आती रही। चलना और मौत, जैसे जीवन के सिर्फ दो ही मेटाफर बचे हों इस मौसम में, मौत की तरफ चलना या मौत से उल्टी तरफ भागना। ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता था। आप चलकर जिस आदमी की ओर जा रहे हैं, कहीं वो कोरोना का दरवाजा तो नहीं? आप सोच रहे हैं कि आप घर की ओर चल रहे हैं, लेकिन सतत जड़हीनता में जकड़े संसार में घर है कहां? क्या नदी का भी कोई घर होता है? और क्या वाकई बीती यात्रा के दाग हथेलियों से धोकर मिटाए जा सकते हैं? रिपोर्टर हूं, इसीलिए स्वभाव में ही चुटकी भर शंका हमेशा से मिली हुई है। अब आप इसे अच्छा माने या बुरा, मेरी नियति में ही कहीं बीच में फंसे रहना लिखा है। अब जैसे देखिए ना, यहां शंका का मतलब ये नहीं कि मुझे विश्वास नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये है कि अविश्वास मेरे मन से कभी पूरी तरह नहीं जाता। विश्वास और अविश्वास के बीच की खाली जगह में ही मेरा संसार बसता है। बिल्कुल उन डॉक्टरों की तरह जिनसे आप रगड़ कर गिड़गिड़ाते हुए पूछते तो हैं, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? तो 12 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद भी दो टूक जवाब आता है, ठीक हो जाना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इसीलिए मैं घरों की ओर चलते लोगों को देखकर ही विश्वास नहीं कर पाती कि ये लोग वास्तव में घर पहुंचेंगे ही। और फिर वही सवाल कि घर होता क्या है आखिर? जिस घर में हमें बचपन के घरेलू नामों से पुकारने वाले लोग ही न बचे हों, वो दीवारें भी क्या कभी घर हो सकती हैं? बीते 10 दिनों से छुट्टी पर थी, लेकिन ये भूली नहीं थी कि रिपोर्टर का जीवन तो वैसे भी सतत प्रसव में रहने के जैसा ही है। कितनी भी छुट्टी ले लें, हम दुनिया से अपनी नाल कभी नहीं काट पाते, खासतौर पर तब जब आसपास का पूरा संसार खामोशी के खोलों में दुबक कर धीरे धीरे बीमार पड़ रहा हो। बीते दिनों दिल के सन्नाटों के बोझ को कंधों पर लादे मैं भी यादों के पहाड़ पर चढ़ती रही। कोरोना के इन दिनों में यादों के पहाड़ चढ़ते हुए स्मृति में यात्रा की सबसे करुणामयी यादें जिंदा हो आई। नर्मदा किनारे सतपुड़ा के जंगलों में रहने वाली एक छोटी भील आदिवासी बच्ची का मुझे कस के गले लगाना याद आया। उसने जब चूमा था मुझे, तो उसकी बहती नाक और लार के निशान मेरे गालों पर रह गए थे। उसके धूप में तपे नन्हे हाथ आज भी मेरी गर्दन पर पड़े रहते हैं। तस्करी पर एक कहानी के बाद बरामद हुई 14 साल की एक बच्ची याद आई, हजारों मील दूर अपने गांव जाने से ठीक पहले दिल्ली में एक शाम वो अपनी माँ के साथ मुझसे मिलने आई थी। सितंबर की उमस में डूबे उस धुंधलके में उन दोनों ने मुझे ऐसे गले लगाया था जैसे हम आदि मानवों के समय से एक दूसरे को जानते रहे हों, और शायद उस युग में भी एक ही गुफा में पलकर बड़े हुए हों। उनके पसीने और आंसुओं का गीलापन आज तक मेरी आत्मा को तरल कर रहा है। और याद आई, कभी सूखी तो कभी गीली, लेकिन हमेशा हमेशा प्यार में डूबी एक जोड़ी आंखें।
लॉकडाउन के पोस्टकार्ड्स। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं। फेसबुक पर टिप्पणियां और सवाल मैं शामिल करना चाहता हूं। तो महेंद्र सहारन ने कल हमसे सवाल पूछा था कि क्या घरेलू मक्खी से कोरोना वायरस फैल सकता है। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 25 मार्च को, आपको बता दें कि लैंसेट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया था कि मक्खियों से भी कोरोना फैल सकता है, इसलिए खुले में शौच ना करें। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दावे को नकार दिया और कहा कि मक्खियों से ये नहीं फैलता। इसके बाद अमिताभ जी ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये स्पष्ट किया गया है कि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन ये मक्खियों के संपर्क में आने से नहीं फैलती। कुछ देर पहले अंबर चतुर्वेदी ने इस ट्रांसमिशन के दौरान हमसे सवाल किया कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना सुरक्षित है। अंबर जी, बीबीसी ने इस पर एक खबर चलाई है कि अखबार पर वही बात लागू होती है जो कि नकदी और सिक्कों पर लागू होती है। इस वायरस से संबंधित जितनी भी मेडिकल रिसर्च हाल में हुई उनमें से कोई भी इस विषय पर शोध नहीं हुआ है कि करेंसी नोट और सिक्कों के जरिए ये वायरस फैलता है या नहीं। वैज्ञानिक समझ ये कहती है कि कोरोना सूक्ष्म बूंदों के रूप में ही मनुष्य की नाक या मुंह के जरिए शरीर में जा सकता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसी संदर्भ में यही बात कही है। लखनऊ से अजय जैन हमें सुन रहे हैं। हेमंत यादव ने सवाल किया है कि क्या ये रेडियो बुलेटिन कब प्रसारित होता है, बता दें। तो हम आपको यहीं पर बता दें कि ये हर दिन 7:30 बजे शुरू हो रहा है और सिर्फ फेसबुक पर ही लाइव है, सिर्फ 5 दिन के लिए, यानी कि शनिवार और रविवार को आप इसका प्रसारण नहीं सुन पाएंगे। तो फिलहाल मोहनलाल शर्मा को आज के इस अंक यानी कि कोरोना दिन भर के इस अंक के साथ विदा दीजिए। मुलाकात तो आपसे तय है, कल फिर से मुलाकात होगी 7:30 बजे। फेसबुक पर आना ना भूलें, अपनी टिप्पणियां लिखें और हमें बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। नमस्कार।